करणरसायनम भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते पधारे हुए प्रभुपाद इसी साक्षात्कार से ही प्राण गदगद है, आनंदित है और उनके साथ पधारा हुआ उनका मंडल श्री देवकी नंदन प्रभु अद्भुत बात कहा ब्रह्मांड कार्य के शक्ति धरे जने जने के वेद को तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोषमी मोहमे कर निदास सर्ववांछा सिद्धि होए यम बंद छूटे जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लूटे मनेर वासना पूर्ण अचिराते होय देव की नंदन तो से ही लोग वृंदावन वासी यत वैष्णवीर गौ प्रथम वंदन करि सफर चरण लीलाचल वासी यत महाप्रभु गौ पीछे पड़िया बंधु सफर चरण नवदीप वासी यत महाप्रभु भक्त समार चरण बंधु भैया अनुरक्त महाप्रभु भक्त यत गौर देशे स्थिति समार चरण बंधु करी अपन ये देशे ये देशे वसे गौरांग ये रगान उद्वाहु करी बंधु समार चरण भैया छेन हवे प्रभु यतनाथ समार चरण बंधु तंती करी हाथ लोग प्रभु कहते हैं कहार भक्तेर संग कार संगे जार संग तार संगे नैन ते नवास की मोर दुखेर कथा जन्म गोई हो यथा धिक धिक न रोता दास आज इस योग तक सौभाग्य ताई वैकुंठार तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठार ऐसा ये योग अपूर्व तमन्यतम ये हमें आज प्राप्त हुआ है प्रभुपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन पूर्वक उनके साथ आए हुए मंडल के चरणों में प्रणत पूर्वक प्रार्थना है कि वो हम पर श्री आशीष वचन से हम सब पर कृपा करें हमको धन्य करने की कृपा
धन्य इनको बैठने में कष्ट हो तो चेयर मंगा दिया जाए इनके लिए हमको चिंता हो रही है
नाम श्रेष्ठं मनमति सचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजवुरिपुरिं माधुरिं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासम् प्राप्तो जस्य कृपया श्री गुरुं तन्नतो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरर्पिषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार सष्टांग दंडत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात त्रिदंडी सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जन मंडली मातृमंडली हमारा यथा योग्य अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मैं यहाँ के दुर्गाणी या लक्ष्मी नारायण मंदिर के कमेटी के मेंबरों को सभापति सेक्रेटरी और जितने इसके ट्रस्टी हैं सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ के लिए की जो हम लोग यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु के कुछ विचारों को यहाँ पर हम प्रकट करेंगे। आज से करीब 5000 वर्ष पहले भारतवर्ष के समस्त ऋषि महर्षि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे और विचार करने लगे हमें क्या करना चाहिए। कलयुग आ गया, कलयुग में बड़ी भारी विपत्तियां आएंगी, इसलिए हमें क्या करना उचित है। सौनक आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, उन्होंने सुत गोस्वामी से कहा, आप तो अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, सब कुछ को सुना है और इसके अतिरिक्त भी आप विचार करने में सक्षम हैं, व्यास जी की भी करुणा आप पर हुई है, इसलिए आपसे हम लोग ये कहना चाहते हैं, प्रायेण अल्प आयुषा कला
युगे
जना
मंदास्मंद मतयो मंदभागा धिपद्रुता
प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या कला विस्मिन युगे जना मंदास्मंद मतयो मंदभाग्या
धिपद्रुता।
कलयुग में आयु बहुत कम है, सतयुग में आयु को कोई था नहीं थी, 60,000 वर्ष तो तपस्या करते थे लोग, त्रेता युग में कुछ घट गई और वो 12,000-15,000 वर्ष की हुई। रामचंद्र जी के लिए सुना जाता है कि उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया द्वापर में और युग कम गई, और कलयुग में अधिक से अधिक 100 वर्ष की मान ली गई, अधिक से अधिक, और उसमें भी मंदा मनुष्य की मति कुछ मंद है, धारण नहीं कर सकते। पहले सारे वेद उपनिषद सब एक व्यक्ति मुखस्थ कर लेता था उसके कंठ में, इसलिए उसको श्रुति कहते थे। आजकल क्या नाम है तो उद्धमंती महाराज, जरा फिर से कहिए तो जरा नोट कर ले, और पहले वेद उपनिषद शास्त्र सब मुखस्थ रहा था। इस पर भी मंदमती मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, चारों तरफ से उपद्रव है। आजकल तो देख ही रहे हैं ये क्या आतंककारी और कितने कितने लोगों का, पहले भी ऐसा ही था। तो ये उपद्रवता, नाना प्रकार के उपद्रव हैं, घर से भी स्त्री से नहीं बनती, तलाक हो गया, बातों बात में बिना कारण का कारण। पहले भारतवर्ष में नहीं थी, पश्चिम देश से हवा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए आपसे पूछता हूं, अतः साधो अत्र जत्सारम समुद्रित्य मनीषया गुहिना सद्धान जेना आत्मा संप्रसिद्ध। इसलिए आपसे मैं पूछता हूँ, कि आप कृपा करके ये बतलाइए जगत के जीवों की आत्मा कैसे सुप्रसन्न रह सकती है। शरीर के लिए नहीं कहा, शरीर के लिए नहीं कहा, क्यों? शरीर मरणशील है। लोगों को आनंद आता है शराब पीने में, सिगरेट पीने में, धूम्रपान करने में और बुरी आदतों में, वो शरीर के सुख से सुख नहीं। पहले ये समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर है क्या? हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब की थैली है। इसमें हम समझते हैं कि मैं हूँ, और भी समझने की बात है इस शरीर से जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ रुपए पैसे प्रतिष्ठा स्त्री पुत्र परिवार पैदा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ये रुपया पैसा का एक ढेला भी नहीं जाएगा संग में, केवल गधे जैसे हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, कुछ नहीं साथ जाएगा, एक ढेला भी हमारा केश भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए विचार करना चाहिए आत्मा कैसी प्रसन्न हो सकती है। इसको समझने के लिए बतला रहे श्रीमद् भागवत में कि आत्मा अजर अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुपराशी। जीवात्मा भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है। भगवान परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा गुण तो जीवों में आएगा ही। इसलिए जीव स्वरूपता आनंदमय है, किंतु भगवान को भूल चुका है। भगवान को भूल करके इस हार चाम की थैली में मैं बुद्धि कर रहा, मैं हूँ, और सारा जीवन इसी के लिए गधे की भांति करता है, जिसमें कुछ भी साथ ले करके नहीं जाएगा। कैसे सुखी हो सकता है इसके लिए देखिए, आज भारतवर्ष ही नहीं संयुक्त राष्ट्र भी चेष्टा कर रहा है। साइंटिस्ट और वैज्ञानिक तरह तरह के आश्चर्यजनक वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, किस लिए? सुखी होने के। बम इत्यादि नाइट्रोजन और क्या क्या बम बन रहे हैं, किस लिए? दूसरों को नष्ट करके हम सुखी रहें, मूल में यही कामना है। अभी हम घर बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, क्रिकेट कहाँ कैसे हो रहा है ये देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति, किंतु साथ ही साथ उन्होंने एक अभिशाप भी दिया। एक फ्लैट में एक ही जगह रहने वाले उनका दिल नहीं मिलता, आज पति पत्नी कुछ अलग हो गए हैं, मन नहीं मिलता। आज पुत्र पिता की त्रेताजुग और सत्यजुग की भांति सेवा नहीं करता, हृदय की दूरी बढ़ी है, आत्मा की भूख मरी है,
और भौतिक भूख बढ़ी है। इसलिए जब तक भगवान का हम स्मरण नहीं करेंगे, जब तक उनको हम सब कुछ अर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे पर ग्रोहित हो ये घृत सिकता ते बनते बिनु हरि भजन न भवतन जिया। यह सिद्धांत तुलसीकृत रामायण श्रीमद् भागवत का अनुवाद है। केवल राम की लीलाएं उन्होंने कही है, किंतु तत्व जितने हैं सब श्रीमद् भागवत से लिए गए। इसलिए यह सत्य है, सब कुछ करो और भगवान को भूलो, आप सुखी नहीं रह सकते। सब कुछ भूल जाओ, कृष्ण को याद रखो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जन्म मरण बंद हो जाएगा। इसलिए पूछ रहे हैं, जयात्मा संप्रसिद्ध, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? हमारे सुत गोस्वामी जी ने जो अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना था, हमारे बलदेव जी की उन पर कृपा हुई थी, उन्होंने व्यास गद्दी पर उनको बैठाया था और कहा कि तुमको सभी कुछ स्मरण होगा। अपने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, सबई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहेतु का प्रतिहता ज्यात्मा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ निश्चित रूप में कहता हूँ, जीवों के लिए अधोक्षज भगवान, इंद्रियाति अवांग मन स्वर जो भगवान है, उनकी अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। लोक में हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये तो जीवन निर्वाह करने की शैली है। धर्म नित्य धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा अजर अमर है, भगवान का अंश है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूपतः धर्म है भगवान की सेवा करना। इसलिए जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी, जीव सुखी नहीं रह सकता, चाहे लाख उपाय करे। उसी को ये करे परम धर्म है। परम धर्म किसको कहते हैं? एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। शरीर रूपी वृक्ष पर दोनों बैठे हैं। भगवान जो साक्षी के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, वो तो इसको देख रहे हैं, और जीव क्या कर रहा है? संसारी कामनाओं में मोह में फंस करके संसार में और लिप्त हो रहा है। जब सद्गुरु की कृपा से समझे जाए भगवान के साथ में हमारा क्या संबंध है, विशेष रूप से हम लोग इस सब का विस्तारित रूप से वर्णन करने की चेष्टा करेंगे पीछे। तो यही भव अहेतु की किसका कोई कारण नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तात्पर्य क्या है? अपने तन से, मन से,
वचन से, भावना से, सब प्रकार से कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की सेवा, जिसे वो प्रसन्न है, वो भी वैष्णव के गुरु के अनुगत्य ने नैरंतर्यमयी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हो, तो इसको भक्ति कहते हैं। तो अभी उत्तमा नहीं हुई, उत्तम भक्ति कब होगी? उसके साथ में दो और विशेषण दिए गए, अन्नाभिलाषिता, कोई भी लौकिक पारलौकिक कामना न रहे। हे कृष्ण, मैं तुम्हारा भजन कर रहा हूँ, हमको पिताजी का राज्य मिल जाए। ध्रुव जी ने कहा ना, वो सकाम उपासना हो गई, भक्ति में नहीं आई, इसलिए बिना किसी कारण के लौकिक हो पारमार्थिक, केवल मात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए हो। प्रसन्न करने से, कहने से, चारण मुष्टि के साथ में कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है, तो ये आनंद की नहीं, उसका मतलब है इन्हें मार डालूंगा। इसलिए केवल प्रसन्नता ही नहीं, सचमुच में कृष्ण के सुख के लिए ही हो। और दूसरी बात, ज्ञान कर्म आदि अनाभूत, हम लोग जीवन धारण करने के लिए कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के नहीं जी सकते, किंतु कर्म कैसा होना चाहिए? भक्ति को ढकने वाला नहीं होना चाहिए। माता पिता की सेवा कर्म है, करना ही होगा, नहीं होने से वो पुत्र ही नहीं है। किंतु माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करने से ही, देश की सेवा करने से ही, लोक समाज की सेवा करने से ही भक्ति होगी, भक्ति ढक जाएगी। उसको दूसरे रूप में लीजिए, जब शरीर भगवान ने दिया है तो भोजन तो करना पड़ेगा, किंतु भोजन इसलिए करेंगे जीवित रह करके कृष्ण की उपासना करेंगे, बस उलट गया। कर्म नहीं करना है, कर्म बंधन का कारण है। सत्कर्म सोने की बेड़ी और असत्कर्म लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ियां हैं। हमें कर्म नहीं करना चाहिए, जो कुछ करते हैं पहले अपने को अर्पण कर दो, मैं कृष्ण का हूं, इसलिए जो कुछ भी करो, व्हाट एवर यू डू टू प्लीज कृष्ण, टू प्लीज हरि गुरु वैष्णव, तब तो ये भक्ति होगी, और कर्म का बंधन छू नहीं सकेगा। इसी कसौटी पर कसने के लिए हम देखते हैं, ध्रुव महाराज जी ने भगवान का दर्शन किया, वो भी नारद जी की कृपा से किया। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इसके बाद में हमारे धाम में कहीं जाएगा। वो भी अपने धाम को लोग वृंदावन नहीं ले गए, पृथ्वी लोक पर आने वाले एक ध्रुव लोक को दे दिए। क्यों? अंत में भी जब उनके लिए रथ आया, विमान आया, चलिए बैकुंठ में, उन्होंने कहा मेरी मैया के बिना मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मैया के पति भी आ सकती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मैया जा रही है पहले, इसलिए इस जगत में हरि लोक नाम का एक लोक है, उसमें वो इसलिए ध्रुव महाराज की भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति है। ठीक है सकाम, किंतु उसे गोलोक वैकुंठ वृंदावन नहीं पाया जा सकता। प्रहलाद महाराज की भक्ति है, अच्छा भाई एक कीर्तन कर लो आप लोग यहाँ के, राधा माधव की संकीर्तन मंडली है ना, हाँ तो एक कीर्तन कर दीजिए आप ही लोग।
हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर हरे
भाई गौ राधेश्याम और
भाजो हरे कृष्ण जपो हरे
कृष्ण। आपके गुरु जी अलाउ करते हैं, खबरदार मत ये कीजिएगा। नीताई गौ नित्यानंद जी बलदेव हैं, गौ जी कृष्ण हैं, इनके साथ में फिर राधे श्याम, राधे और कृष्ण बलदेव प्रभु जी के सामने कैसे रह सकते हैं?
अरे
ये रसाभास दोष है, इसलिए आज से ऐसा मत करेंगे। समझ रहे हैं कुछ? निताई गौ जहाँ पर कृष्ण बलदेव हैं वहाँ राधा जी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये मनुष्य का परम धर्म है बतलाया। वासुदेव भगवती भक्ति योग ऐसे जो वासुदेव कृष्ण हैं इनके प्रति ऐसी अहेतु की भक्ति यदि की जाए अवश्य ही संसार से वैराग्य होगा ही, और जितने तत्व ज्ञान हैं वो तत्व ज्ञान हो जाए। यदि तत्व ज्ञान आपको नहीं होता है संसार से विरक्ति भी नहीं होती, मतलब जाति भक्ति नहीं हो रही है, कहीं छेद है, पानी निकल रहा है, जरूर होगा। भगवान का भजन कर रहे हैं अब वैराग्य न हो विषयों से ये असंभव। धर्मा सुनिश्चिता है पुनसांग विश्व सेम कथा सुझा नोत्पाद्यादि जतिरतिं श्रमयेव हि केवलम्। यदि आप अच्छी तरह से सब धर्मों का आचरण करते हैं किंतु भगवान के हरि कथा में रुचि नहीं हुई सुनने में, श्रवण में भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि नहीं है, सब बेकार का है। यदि आप हरि नाम भी कर रहे हैं किंतु हरि कथा में रुचि नहीं है, कुछ दिनों के बाद में हरि नाम भी छूट जाएगा, जरूर छूट जाएगा। इसलिए हरि कथा में रुचि होनी चाहिए। परीक्षित महाराज जी ने 7 दिनों में ही हरि कथा सुना, कोई कुछ नहीं आचरण करना पड़ा, भगवान की प्राप्ति हो गई। संक्षेप में बतला रहा हूँ, कथाएं तो वस्तुत है, कल ही का दिन है ना,
परसों
का दो दिन है। इसमें हम चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु की प्रधान प्रधान बातें शिक्षाएं इस भागवत से आ जाए। व्यास जी द्वापर के अंत में प्रकटित हुए, ये नारायण है, व्यास जी साधारण नहीं है। इन्होंने वेदों का 4 विभाग किया और अपने 4 शिष्यों को वेदों को पढ़ाया और उनको ये दिया। इसका अतिरिक्त महाभारत की रचना की और उसको भी अपने शिष्यों को जयमिनि को पढ़ाया, उनको दिया। इसका अतिरिक्त सारे श्रुतियों का, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, ब्रह्म सूत्र का संकलन किया और ब्रह्म संकलन करके ही नहीं, इनकी भाषा जरा कठिन लोग नहीं समझ पाते थे इसलिए पुराणों की रचना की। इसके बाद में महाभारत की रचना की, गीता इत्यादि सब उसमें आ गया। तो भी एक दिन अपने सामने पास प्राश आश्रम में बैठे हुए बड़े खिन्न से थे, मन कुछ ठीक नहीं, सोच रहे हैं जो कुछ मुझे करना चाहिए मैंने किया, वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की जिसमें गीता इत्यादि सभी कुछ आया, सब पुराणों की भी मैंने रचना की, तो भी मेरा प्रसन्न क्यों नहीं मन हो। इतने में गुरु जी आ गए नारद जी। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे पूछा, प्रभु आप बतलाइए, मैं सब कुछ किया है, मेरा मन खिन्न क्यों है? ओ, तुम्हारा मन खिन्न है मैं जानता हूँ। तुमने अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चार चीजों का जैसे वर्णन किया है इन शास्त्रों में, वेदों से लेकर और इधर पुराणों में महाभारत में, पर धर्म अर्थ काम मोक्ष बस ये भगवान की लीलाओं की कथा तुमने वर्णन नहीं की, इसलिए तुम्हारा मन खिन्न नहीं है। क्या तुमने लिखा है जो कृष्ण ही भगवान की अवधि स्वयं भगवान है? तो नहीं, तो कृष्ण का साधारण रूप में भारत में वर्णन किया किंतु स्वयं भगवान है ये नहीं। और तुमने ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया, सारे ब्रह्मांड का रचयिता के रचयिताओं के भी मूल आदि हैं, सबके अनादि हैं, स्वयं अनादि हैं और सबके आदि हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। वे गोपियों के प्रेम में नृत्य करते हैं, गोपियां कहते हैं लड्डू देंगी जरा नाचो तो, बस एक यहाँ और यहाँ दे करके आलाप करना। नंद बाबा कहते हमारी जूती लइयो तो, नंद बाबा की जूती सिर पर नाचते हुए ठेई ठेई करते हुए आ रहे हैं। लिखा तो नहीं, क्या तुमने लिखा जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका बाहर भीतर नहीं है, वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी मैया ने रस्सी से बांध दिया, लिखा कहीं? वो रस्सी नहीं बल्कि प्रेम की डोरी थी। अरे तो तुमने लिखा कहीं? तो नहीं। क्या तुमने लिखा गोपियों के कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या अवस्था होती है और कृष्ण से मिलन में क्या उनको आनंद होता है, कहीं वर्णन किया? कृष्ण कहते हैं क्या गोपियों के लिए, तुमने हमारे घर हमारे लिए पति पुत्र घर द्वार सब कुछ छोड़ और एकांतिक रूप से हमारा आश्रय लिया, न पा रहे हम निर्बद्ध, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ जन्म जन्म का, तुमने हमारे लिए जो सबको छोड़ा है मैं नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते हैं कृष्ण? कौन भक्त को छोड़ेंगे? क्या नंद बाबा को यशोदा मैया को छोड़ेंगे, न ब्रजवासियों को छोड़ेंगे, ना आप भी जो भगवान का भजन करते हैं उनको छोड़ देंगे? उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, ये जथा माम प्रपद्यन्ते, जो हमारा जैसा भजन करते हैं मैं उनको वैसा पढ़ूँगा, झूठे पड़ जाए। गोपियाँ कहेंगे सबको छोड़ो और हमारा शरणापन्न हो। लिखा क्या तुमने? लिखा कृष्ण प्रेम स्वरूप है, गॉड इज लव, लव इज गॉड, कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, अपनी बंसी मुकुट सब कुछ राधा जी के चरणों में न्योछावर करके कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदों पल्लो, अपने चरण कमलों से हमारे सिर को विभूषित करो। राम कह सकते हैं, निसिंह कर सकते हैं, ना कौन कहेगा? राम अलग नहीं है, कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम है, वही है, किंतु इसलिए हम नहीं कर सकते। निसिंह भगवान करेंगे क्या? वो रास कर सकते हैं? ये सब लीलाएं कृष्ण कर सकते। तुमने कुछ नहीं लिखा? ये नहीं, हमने तो मैं जानता नहीं इसलिए नहीं लिखा। अच्छा तैसा करो, भक्ति के द्वारा चित्त को एकाग्र करो और उसके द्वारा समाधि में देखो, हमारी कृपा से देख सकेगा। भक्ति माने क्या? शरणागति, भगवान के चरणों में। अब मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में सौंप रहा हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। धीमही है ना, धीमही भर्गो देवस्य धीमही, ध्यान करता हूँ। गौतम बुद्ध थे जानते हुए कपिल वस्तु के, भगवत बुद्ध नहीं है वो। उन्होंने समाधि लगाई किंतु ऐसे ही समाधि लगाई, मन को संसार वस्तुओं से संसार वस्तु से हटाया और समाधि में लगे, उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जगत शून्य है, शून्य से निकला है, शून्य हो जाएगा। भारतवर्ष ने स्वीकार नहीं किया, उनको यहाँ से विताड़ित कर दिया। इसलिए समाधि मैंने समधि, समधि धी मैंने बुद्धि, कृष्ण के समान बुद्धि हो और एकदम बराबर हो, जिससे कि शरणागत हो जाने से कृष्ण अपने आप लीलाओं के साथ में दर्शन दिया। यह है समाधि। इसलिए वैष्णव लोग समाधि करते हैं, उनकी सारी लीलाओं का दर्शन करते हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी की कृपा से समाधि में राम की समस्त लीलाओं का दर्शन किया और वाल्मीकि रामायण। ऐसे ही श्रीमद्भागवत समाधि ग्रंथ है, समाधि भाषा है, ग्रंथ है। व्यास जी ने समाधि लगाई और उसमें भक्ति योगे इन मनुषा सम्यक पढ़िते हम पश्चिम पुरुषम पूर्ण मायांच जगत। उन्होंने देखा क्या, कृष्ण की सारी लीलाएं बाल्य लीला से अंतिम तक, रास लीला इत्यादि सभी कुछ जिसका वर्णन भागवत ने किया देखा किया। और उसके बाद में उन्होंने देखा जीव भगवान का अंश है, भगवान को भूल करके तटस्थ अवस्था से नीचे गिर रहा। आज जो लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, और गुरु भी कैसा, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यं। संसार से वैराग्यवान भगवान की अनुभूति होने करने वाला और समस्त शास्त्रों का ज्ञान जो शिष्य के सब प्रकार के संदेह को दूर कर सकता, इनके रहने पर भी सब मूल है, भगवत अनुभूति हो और नाम संकीर्तन में रुचि हो तब तो गुरु है। जो भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते हैं वो गुरु नहीं हो सकते। इसलिए गुरु के पदाश्रय कर करके समाधि में उन्होंने जब देखा और भागवत में, ये है भागवत। इसलिए भागवत क्या है, स्वयं ही उन्होंने एक जगह और लिखा है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विर्णिन्न गायत्री भाष्य रूप असौ वेदार्थ परि। ये गायत्री का अर्थ है ना, गायत्री धीमही। भागवत का पहला श्लोक में भी धीमही और अंतिम श्लोक में भी धीमही एक सूर में है। इसलिए गायत्री का भाष्य महाभारत का तात्पर्य निर्णय है और ब्रह्मसूत्र का अर्थ है, अर्थ है, वेद का विस्तार है। इसलिए गीता भी लिख दिया था, चित्त की शांति नहीं थी, जब भागवत लिखा तब उनकी चित्त की शांति। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्तमान्य ग्रंथ है, इसमें समस्त जगत की सर्वकालिक समस्याओं का संपूर्ण रूप से समाधान है। यदि इसको कोई ग्रहण करके इसको फॉलो करे, इसका आचरण करे तो ऐसा। ये तो हमने मुखबंद अब किया, अब इसी कसौटी पर हम प्रहलाद महाराज जी का चरित्र महाराज जी आपको संक्षेप में सुना लें। प्रहलाद जी का
ठीक।